ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिड़ला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देशभर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 एमबीबीएस विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एनएमसी द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज एमबीबीएस शिक्षा के लिए एनएमसी विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटास ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।